15 साल की उम्र थी, खेलते खेलते में एक नौजवान आ गए थे, गिल्ली उठा के कट चोट मारा ना, डायरेक्ट आके मेरी आंखों में लग गया।
ये लीजिए आपके बराबर रसूल हबीब बहुत अच्छी
बात। आप आ गए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात।
अभी तो हमने इनसे पूछा कि अगर आप बात करो अगर अब्दुल हबीब डायरेक्ट आ जाए तो मैं सोचता हूँ कहाँ बिठाऊंगा।
11 साल की उम्र तक सब दिखता था, अब आपको नहीं दिखता
जी।
दो दो जगह क्यों काम करते हैं?
बस चलता है गाड़ी, यहाँ से 100 रुपये मिलता है, यहाँ से 150 मिलता है,
सारा हो जाता है इसमें
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस्तेमा का पाबंद हूँ।
लेकिन फिर जुमेरात की रात वो मुर्गी वाला काम फिर कैसे होता है?
उस दिन मैं छुट्टी करता।
तो क्यों छुट्टी करते हो, पैसे कम हो जाते हैं?
देने वाला वही है। सदा शुक्र खुदा।
प्रोग्राम है हमदर्दी और आज हम एक ऐसे इस्लामी भाई के घर मौजूद हैं जो आंखों की बीनाई से महरूम है मगर हौसले जवान है, हौसले बुलंद है, काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? एक नहीं बल्कि दो दो काम करते हैं। और क्या दो काम करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, उनसे तासुरात लेंगे और इसी दौरान उन्हें खुश करने के लिए एक अमल करेंगे। क्या अमल होगा आप देखिए सिलसिला हमदर्दी में।
आज हमें इंशाल्लाह कराची के इलाके लांढी अब्दुल मजीद कॉलोनी वहां जाना है। अब वहां जाकर पता चलेगा कि किसके घर पे जाना है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने एक इस्लामी भाई को तलाश किया है कि जिनके घर पे हमने जाना है। और माशाल्लाह मेरे साथ मेरी पोती मिशकात फातिमा भी है और ये भी मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी पोती जो है वो मिशअल फातिमा है माशाल्लाह, अभी इसी महीने इनकी विलादत हुई है। आप भी दुआ कीजिएगा, माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह निकलते हैं और हम इंशाल्लाह आपको रास्ते के भी कुछ हालात बताएंगे, वहां पहुंच के देखते हैं किसके घर जाना है, उनके क्या हालात हैं और आपको क्या सीखने को मिलता है।
मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रिजा।
हमदर्दी सिलसिला है नाजरीन और अल्लाह पाक की रजा के लिए सवाब हासिल करने के लिए हम ये सिलसिला कर रहे हैं। इंशाल्लाह किसी की दिल जो होगी, बड़ी उम्मीद है कि जब हम उनके घर जाएंगे तो उनके दिल में खुशी दाखिल होगी। जो बीमार भी हैं सुना है तो इयादत की नियत भी कर लेते हैं, सुन्नत है इयादत करना और तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो हमने तोहफा भी उनके लिए ले लिया है इंशाल्लाह, तो तोहफा भी पेश करेंगे। घर में जो लोग होंगे उनको सलाम भी करेंगे, ये भी नियत कर लेते हैं कि नेकी की दावत इंशाल्लाह उनको पेश करेंगे और कोई ऐसी बात समझाने की हुई इंशाल्लाह वो भी करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसी तबीयत आपकी?
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल करम है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का। आप सुनाएं आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? वालिद साहब आपके बता रहे थे मेरे ख्याल में 34 साल के करीब उम्र।
हाँ 34 साल है हमारी।
माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको ये जो मामला थे, बीनाई आपकी चली गई?
उस टाइम मेरी 11 साल की उम्र थी तो मैं खेल रहा था, हमारे साथ एक दोस्त था उसके साथ खेल रहा था, तो बस खेलते खेलते में एक नौजवान आ गए थे, जैसे अभी हमारी उम्र है ना ऐसे नौजवान की उम्र थी, तो उसने खेला गिल्ली उठा के कट शॉट मारा ना, तो उसका वजह से डायरेक्ट आके मेरी आंखों में लग गई। दिखाऊं इसमें इस आंखों में लगी थी।
अच्छा
सर जी बह गई, उसका वजह से इसमें जरफ आ गई जी। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा तो देखने के बाद फिर आंखों का इस आंखों का ऑपरेशन वगैरह किया, तो किया तो जख्म सुखाने के लिए इंजेक्शन लगाया फिर दवाई वगैरह दिया, तो जख्म को तो साथ साथ सुखाया, सुखाते जो हाथ में जो दरवाजा के नीचे उंगली वगैरह आ जाता या छाला नहीं पड़ जाता
जी, जी, जी।
तो वो नस में छाला पड़ गया था ना, तो उसका वजह से ना वो जो खून रुका हुआ था ना, तो जख्म को भी साथ साथ सुखाया और उसके साथ साथ ये मेरा जो खून था उसको भी सुखा दिया, यानी कि नस को भी सुखा दिया।
हमारी नीयत यही है कि हम इस तरह के जो सिलसिले कर रहे हैं, एक तो जिसके पास जा रहे हैं उसकी दिलजोई तो है लेकिन मायूस लोगों में से मायूसी खत्म की जाए, और दूसरा ये मैसेज दिया जाए कि हमदर्दी करनी चाहिए, वक्त निकाल कर किसी के घर पे जाना चाहिए। मैं फैजान मदीना के करीब रहता हूँ और अब यहाँ से हम लांडी जा रहे हैं, तो इट्स एक लॉन्ग रूट, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इखलास अता फरमाए। मेरी वालदा مرحومہ کی قبر شریف بھی آ گئی ہے تو سلام بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم صلفنا من حمد اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب کریم والدہ کی اور والد صاحب کی مغفرت فرمائے, کے درجات بلند فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب کریم کروٹ کروٹ میں جنت کی نعمتیں عطا فرما, ہمیں بھی ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی دے, اور آخری وقت ایمان والی عافیت والی مدینے والی موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحاب اجمعین.
فل کوشش کیا ہمارے گھر والے نے, فل کوشش کیا
جہاں جہاں جا سکتے تھے,
مطلب کہ مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ کراچی کے اندر جتنا بھی آئی ہاسپٹل تھا سب جگہ میں نے ان کو کیا.
تو جب ان کا یہ معاملہ ہوا اس وقت آپ موجود تھے گھر پہ, کیسے آپ کو پتا چلا؟ کس نے
نائٹ ڈیوٹی کر کے میں آیا تھا گھر پہ سویا ہوا.
اچھا,
سونے کے بعد یہ کیا کیا, بچہ تھا بستر سے اٹھ پٹ کے چلا گیا کھیلنے کے.
اچھا, جیسے آپ کی آنکھ لگی اٹھ کے باہر کھیلنے چلے گئے.
ہاں,
پھر یہ حادثہ ہو گیا.
تو یہ حادثہ ہو گیا تو میں سویا ہوا تھا, تھوڑا دیر کے بعد خبر سن رہا ہے کہ بولے اس کو لے کے ہسپتال کو لے کے گیا.
مطلب آپ نے جتنی کوشش کرنی تھی اپنے لوگوں سے قرض بھی مانگا, ڈاکٹروں بھی ڈاکٹرز بھی چینج کیے,
اس کے پیچھے جتنے میں نے پیسہ خرچہ کیا کہ رات دن محنت کر کے پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ایک سارو تھا, ڈاکٹر سے بات کیا بولے اگر آنکھ لگا دیا جائے
دوسری آنکھ نکلی آنکھ.
ہاں,
اچھا پھر
آزمان نام تھا میرا سارو کا, بڑا سارو ہے. اس نے بولا کہ ہم ایک آنکھ دے دے رہے, ہم بولے میرا ایک آنکھ لے لے, دونوں صحیح ہے جو آن ہوتے رہے گا.
پھر آپ ایک اور ہاسپٹل گئے.
ہاں,
اور مطلب کہیں سے بھی مسئلہ حل نہیں,
کہیں سے مسئلہ حل نہیں.
چلے, ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے.
مایوس کر دیا, اس کے بعد پھر بھی میرا گھر والے بھی کوشش کیا, میں نے بھی کوشش کیا. ہم بولے بھائی ہم نے اتنا بھی ڈاکٹر کو بولا تھا کہ دیکھ میرا رہنے کا ٹھیک ہے, میں پورا جگہ دے دوں گا.
اللہ اللہ, بس کسی طریقے سے آنکھوں کی روشنی,
اس کا آنکھ کا روشنی دے دے.
اللہ, مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے باپ کا جذبہ کہ ایک جوان بیٹے کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس آنکھ کو پانے کے لیے اسپتالوں کے چکر لگا ہے, نہ جانے کون کون سے ڈاکٹروں کے پاس گئے, اسپتالوں پہ گئے, لوگوں کے پاس جا کے قرض مانگا, ایون کہ یہاں تک آ گئے کہ میں یہ گھر بیچ دوں گا اور میرے گھر کا سایہ جو ہے بھلے چلا جائے مگر کسی طریقے سے میرے بیٹے کی آنکھ آ جائے. تو وہ بیٹے جو اپنے والدین سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں, والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ دیکھیں باپ کیا چیز ہے. اور حقیقت بات یہ کہ آپ کو یہ احساس اس وقت ہوگا جب آپ خود باپ بنیں گے.
آج دراصل جو مجھے بتایا گیا کہ کوئی نابینا اسلامی بھائی ہیں, ینگ ہیں اور بڑے انرجیٹک ہیں, بڑے حوصلے والے ہیں اور بہت کچھ وہ کام کرتے بھی ہیں, تو ہماری مجلس نے ان کو سلیکٹ کیا تھا, تو آج ان کے پاس جاتے ہیں. واقعی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, بینائی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ نابینا سے زیادہ کوئی نہیں بتا. جو نابینا ہیں مجھے سن رہے ہیں, مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کی آنکھیں لے لیتا ہے, یعنی جو نابینا ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا پر وہ راضی رہیں, تو اللہ قیامت میں انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے.
اچھا اکبر بھائی, آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس آزمائش میں آ گئے, آپ کے والد صاحب نے بہت محنت کی, اور جب کہیں سے بھی آپ کو آرام نہیں آیا, تو پھر آپ کے ذہن میں کیا تھا, کیا پلاننگ تھی کہ اب تو میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور اب مطلب میں نہ دیکھ سکتا, پہلے میں دیکھ سکتا تھا, میں نے سب کچھ دیکھا اور اب میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, تو اب میں کیا کروں گا, لوگوں کے سامنے کس طرح جاؤں گا, اپنی آگے کی جو زندگی وہ کس طرح گزاروں گا, آپ کے کیا جذبات تھے اس کو؟
تو الحمد للہ اس ٹائم میں نے سوچا تو زندگی تو ہو ہی گیا ایسا. سب سے پہلے میں نے تو لو لگایا اللہ کے گھر کا, مسجد کا, نماز وغیرہ پڑھا.
نماز تو یہ بچپن سے پڑھ رہا.
اچھا,
یہ نماز کا بہت پابندی تھا. ہاں, ماشاءاللہ تھوڑا سا نظر بھی آ رہا تھا.
اچھا, اس وقت دونوں آنکھیں آپ کی چلی گئی تھی یا ایک تھی ایک گئی تھی؟
ایک آنکھ پہلے ہوتی ہے.
وہ تو ختم ہو گئی نا,
یہ تو چلا گیا. پھر یہ جو دوسری آپ کی آنکھیں الٹے ہاتھ والی,
ہاں,
تو یہ پھر اس میں سے نظر آتا تھا آپ کو؟
اس میں وہ تھا نا
موتیا تھا.
ہاں جی,
بچپن میں موتیا تھا آنکھوں میں.
بچپن
کم نظر آتا تھا آپ کو اس میں. اچھا, اب جب آپ نے دیکھا کہ جس آنکھ سے آپ کو زیادہ نظر آتا تھا وہی آنکھ چلی گئی, معمول کیا تھا آپ کا؟ آپ گھر سے نکلتے تھے تو پھر کس طرح, کوئی لے کے نکلتا تھا یا خود ہی نکلتے تھے, سہارا لیتے تھے, کیا کرتے تھے اس وقت آپ؟
تو خود نکلتا تھا, خود کوشش کرتا تھا ایسے, کب تک کسی کا سہارا بنوں گا, کب تک کسی کا سہارا لوں گا.
گھر والے روکتے تھے مگر آپ نکل جاتے تھے.
ہاں جی,
مولا سے اپنے ملتا ہے. बंदा नमाज में।
मैंने आपका भी एक बयान सुना था जिसमें आपने फरमाया था कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग के पास आया और अपने अपनी मुफलिसी का और अपनी गुरबत का उसने अर्ज की उस बुजुर्ग को, तो उन्होंने कहा भाई तुम अपना एक हाथ दे दो और 1,00,000 रुपए ले लो, अपनी एक आंख दे दो, अपने 1,00,000 रुपए ले लो। तो इस तरह से आपने उस बयान में जिक्र फरमाया था।
जी वो वही बहुत प्यारी बात है कि लोग शिकवे करते ना, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमें अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। तो एक बुजुर्ग के पास इस तरह का एक शख्स गया और जाकर कहता है हुजूर मैं बहुत कमजोर हूँ और बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पीछे रह गया, मेरे को कुछ भी नहीं, अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, माद अल्लाह शिकवा कर रहा था। तो उन बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की बात फरमाई, कहा कि अच्छा ठीक है तुम कहते हो तुम्हें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, ऐसा करो कि तुम अपनी आँख दे दो और मिसाल के तौर पर 2,00,000 रुपए ले लो। उसने कहा हुजूर मैं तो अंधा हो जाऊंगा। फरमाया अच्छा एक कान दे दो 2,00,000 रुपए ले लो। हुजूर मैं बहरा हो जाऊंगा। एक हाथ दे दो 2,00,000 रुपए ले लो। वो गिनवाते रहे, वो मना करता रहा, वो गिनवाते रहे, वो मना करता रहा। आखिर में बड़ी प्यारा जुमला कहा कि कमाल के आदमी हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, लाखों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहा। तो ये आधा ये तो बोलने की बात है। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए भी हो और आंख ना हो, तो वो करोड़ों रुपए के सामने आंख की वैल्यू नहीं है।
दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता कब हुए और क्या जरिया बना, किस तरह दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आ पाए?
बैतुल नूर मस्जिद में गमखार इज्तिमा हुआ था।
अच्छा, ताबीज़ा तारिया के सबब जो हुआ था।
जी तो उसमें मैं आया, उसमें आके फिर वहाँ पर ही मेरे इमामा शरीफ सजाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ से फिर मैंने इज्तिमा का पवन बना। फिर उसके बाद ये हुआ तो फिर इसी तरीके से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना यहाँ पर आलू प्याज का काम वगैरह करता हूँ ना।
अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ से आप जब सुबह मार्केट बता रहे मार्केट जाते हैं, मार्केट कितनी दूर है यहाँ से?
यहाँ से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट का रास्ता है।
अच्छा 2 मिनट का रास्ता आपके लिए भी?
आँख वाले के लिए तो 1 मिनट का रास्ता।
अच्छा
हम जैसे के लिए 2 मिनट का रास्ता, क्योंकि हर चीज संभल के चलना पड़ता ना।
कौन लेके जाता मार्केट आपको?
खुद जाता हूँ।
खुद जाते हैं
जी?
लाठी वगैरह इस्तेमाल करते हैं? रस्सा वगैरह
जी, वो छड़ी होता है तो वो छड़ी को ऐसे ऐसे कर करके
जी जी
जाता हूँ आगे। अगर कोई चीज आता जैसे ठेला आ गया या नीचे बाइक वगैरह,
ये करने के बाद फिर दावत इस्लामी की एक्टिविटीज में आ जाते हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ते हैं, हफ्तावार इज्तिमा भी माशाल्लाह जाते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह
मदनी काफलों में भी सफर करते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप दावत इस्लामी से मदनी माहौल का अवस्था है माशाल्लाह, तो मदनी चैनल भी फिर आप सुनते होंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह।
मदनी चैनल पे क्या सुनते हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बयान आते हैं बयान सुनता हूँ।
मदनी मुजाकरा देखते हैं?
मदनी मुजाकरा सुनता हूँ।
और
अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हबीब अतारी का बयान वगैरह आता है वो सुनता हूँ।
फिर तो आप ज़हनी आज़माइश भी देखते होंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल।
नाज़रीन एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जितने मुझे देख रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें। ड्राइवर भाई ना करें वरना गाड़ी भी चला रहे हो,
आंख के सामने करोड़ों रुपए की वैल्यू।
आंख बंद करें और कुछ सेकंड के लिए, मैंने भी बंद की आप भी बंद करें और अब खोल लें। जिस वक्त आपने मैंने आंखें बंद की उस वक्त आंखों के सामने क्या था?
अंधेरा।
अंधेरा ब्लैक। जरा गौर कीजिए कि कुछ सेकंड्स के लिए जो अंधेरा मेरी और आपकी आंख के सामने था, वो अंधे की नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी के लिए होता है। वो ऑल लाइफ, पूरी लाइफ उस अंधेरे में गुजारता है। मैं और आप सारी जिंदगी सिर्फ आंख का ही शुक्र अदा करें ना तो भी नहीं कर सकते। तो बाकी जो आगा है, जबान है, कान है, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, अल्लाह मुझे भी शुक्र गुजार बनाए और आपको भी बनाए। नबी पाक की वो दुआ है ना, यानी प्यारे आका से बड़ा शुक्र गुजार कौन है। मगर ये हमारी तालीम के लिए कितनी खूबसूरत दुआ है। اللهم اعنني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك। क्या खूबसूरत दुआ, यानी अल्लाह के हबीब अल्लाह ही से मदद मांग रहे हैं। اللهم اعنني على ذكرك, तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और तेरी बेहतरीन وحسن عبادتك। अल्लाह करे कि मैं और आप ऐसे बन जाएं।
ये बताइए कि ज़हनी आजमाइश में आप देखते हैं हाजी हबीब को भी देखते हैं आप, उनके बयान भी सुनते हैं, कोई ऐसी उनका अंदाज, कोई उनका मतलब उनका लफ्ज जुमला जो आपको पसंद आता हो?
आपका जवाब दुरुस्त है।
ये किसका इस्तेमाल
है? अल्लाह हाजी हबीब अतारी।
ये है हाजी अब्दुल हबीब। अच्छा ये बताइए कभी हाजी अब्दुल हबीब से मुलाकात हुई आपकी?
जी ये अपना अब्दुल्ला गोट में इज्तिमा हुआ था उस दिन उनसे पहली मुलाकात।
तो लाइन में लग के मुलाकात हुई थी ना
जी।
कभी टेलीफोन पे बात हुई है?
कभी भी नहीं।
अभी बात करना चाहेंगे टेलीफोन पे? नहीं, दिल की कैफियत ऐसी हो रही की क्या बात
होंगे।
चलो हाजी अब्दुल हबीब को मैसेज करता हूँ, अगर फोन आ जाए उनका मैं अर्ज करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मिस कॉल भी मारता हूँ, हाँ देखिए मदी चले के नादरीन रुकने शुरू से मोहब्बत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन मोहब्बत करने वाले की जो है अब्दुल अबैस से टेलीफोन में बात करवाते हैं, मिस कॉल मारते हैं क्योंकि फोन करूंगा तो मसरूफ होंगे, मिस कॉल मारता हूँ तो शायद देख ले तो हो सकता है कि फोन कर ले और आप कि टेलीफोन पे बात हो जाए। क्या कहेंगे अब्दुल अबीब भाई को आप अगर टेलीफोन पे बात हो जाए? जरा मिस कॉल तो चली गई है, अगर टेलीफोन पे बात हो जाए क्या कहेंगे आप उनको?
तो चलिए उनको यही कहूंगा, सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करूंगा, अल्लाह पाक हिफाजत में रखे।
अपने लिए क्या कहेंगे, वो तो आप दुआएं दे रहे हैं उनको, उनसे क्या लेंगे आप?
उनसे क्या लेंगे, बस आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश आबाद रखे।
भाई ये तो आपने दुआएं दे दी ना उनको
जी,
अब आपको भी तो कुछ लेना है ना उनसे, क्या लेंगे आप उनसे? आपने सारी दुआएं उनको दे दी तो उनसे क्या दुआएं लेंगे, उनसे क्या अपनी ख्वाहिश दिली ख्वाहिश का इजहार करेंगे? मुझे कोई पसंद हो ना और मेरी टेलीफोन बात हो जाए तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं होगी। और जिससे मैं मेरे फेवरेट बंदा है मैं उससे बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे और डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं सुनता था आवाज, अब मैं सलाम कर रहा हूँ तो वहां से जवाब आ रहा है। क्या मतलब क्या फीलिंग होगी?
बहुत अच्छी फीलिंग होगी।
फिर आप बोलेंगे क्या ये तो बताएं?
यही बोलूंगा आप कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं।
मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अब्दुल अबीब ने हमारी कॉल देखी होगी ना और अगर वो कोई मसरूफ नहीं होगा तो जरूर उनकी कॉल आएगी इंशाल्लाह। आप अब्दुल अबीब को पता क्या कहिएगा, हजरत आप हमेशा हम तो टेलीविजन पे आपकी आवाज सुनते हैं, आज आप टेलीफोन पर, टेलीविजन पे नहीं टेलीफोन पे कोई मदनी फूल देते हैं।
सुभानअल्लाह,
तो उनसे ये भी दुआ करना चाहता था, हमारे लिए भी दुआ करते हम भी मदीने चले जाएं,
आमीन,
हमें ईमान पर खात्मा मिल जाए, ये सारी दुआएं करवा देना। देखिए मौका फिर कभी कभार ही मिलता है।
हाँ। तो ये इस सिलसिले के डायमेंशन जो मैं बता रहा था कि एक तो जिसके घर गए उसकी खुशी, हम जो लोग जाते हैं हमारी अपनी एनर्जी बढ़ती है और मुझे बहुत उम्मीद है कि नाज़रीन जो है इनसे सबक हासिल करें कि हमें किस तरह दूसरों के साथ मदद करना है और अपनी मुश्किलों में अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है। तो अगर ये तमाम चीजें होने लग जाए तो हमें लगेगा हमारा सिलसिला अल्लाह की रहमत से वसूल हो गया। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी फेस हम सब पर आता फरमाए।
ये तो टेलीफोन पे बात की होगी ना, अल्लाह करे टेलीफोन पे बात हो जाए। अगर किसी दिन अब्दुल अबीब भाई आपसे मुलाकात के लिए आ जाए तो
क्या बात है, तो मैं सोचूं कहाँ इनको बैठाऊं।
अभी तो हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे टेलीफोन पे उनको बोलेंगे हजरत कभी टाइम निकाल के अकबर अली भाई के घर भी तशरीफ ले आए, ये आपके बहुत मोहब्बत करने वाले ज़ेनी आजमाइश बड़े शौक से देखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मिनट मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल अबीब भाई की कॉल है।
अस्सलाम वालेकुम
रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी यूसुफ बापू आपने कॉल की थी, आपकी मिस कॉल आई हुई थी।
अरे वाह माशाल्लाह, हमारे रुकने शुदा की कॉल तशरीफ लाई। हुजूर हम एक इस्लामी भाई के घर पर बैठे हुए हैं और ये इस्लामी भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपका सिलसिला ज़ेनी आज़माइश भी देखते हैं, बेचारे आंखों की बिनाई से महरूम है, तो ये कह रहे थे अगर हमारे अब्दुल अबीब भाई से बात हो जाए तो मदीना मदीना।
क्या नाम है इनका?
ये आप खुद इनसे डायरेक्ट बात करें, स्पीकर ऑन है। जी अकबर भाई
जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी मेरा नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी है।
अच्छा
जी,
और आपका नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी बताया आपने।
जी
चले, क्या करते हैं आप?
जी मैं आलू प्याज का दुकान में ना काम करता हूँ भाई। आप सुनाइए आप कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल, अल्लाह पाक आपको और मजीद बरकत दे। आइए ना कभी हमारे गरीब खाने में भी तशरीफ लेके आइए।
कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं?
मजीद कॉलोनी सेक्टर वन।
अच्छा, ये कौन सा एरिया है मजीद कॉलोनी?
सेक्टर वन लांडी।
अच्छा लांडी में। अच्छा
जी,
तो लांडी लांडी तो ये कोरंगी से आगे वाला एरिया है शायदाबाद।
जी
अच्छा, तो मुझे फिर आप कैसे पहचानते हैं, आपने तो देखा ही नहीं होगा।
बस मैं आवाज से पहचान लेता हूँ, ये जैसे जैसे मैं अभी आपका आवाज पहचाना हूँ। हाजी हबीब अत्तारी है।
अकबर भाई आप अब्दुल अबीब से बात कर रहे हैं
जी।
पता है आपको, आपके लिए खुशखबरी है
जी।
ये लीजिए आपके बराबर में अब्दुल अबीब भाई तशरीफ लाए।
मिले मुझे को अगर मिल जाए रब तेरी।
माशाल्लाह।
और कैसे आप? ठीक है।
बात है मौला से और मांगता तो और मिल जाता फिर।
अभी तो हमने इनसे पूछा अगर आप बात करो अगर अब्दुल अबीब डायरेक्ट आ जाए तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ बिठाऊंगा मैं।
अल्लाह
चेहरे की रौनक बता रही है आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
तो आप तो मुझे नहीं देख पाते, सुना है आपने, तो आपने क्या ऐसा बनाया कि कैसे अब्दुल हबीब जिसकी मैं आवाज़ सुनता हूँ वो कैसा लगता होगा?
अल्हम्दुलिल्लाह आपका रंग साफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जला, अल्लाह पाक आपको निखार में और बरकत डाले।
ये कैसे सब चीजें आपको पता चल रही है भाई?
मैं बोला ना अपने दिल से मैं बंदे को कैच कर रहा
हूँ। क्या बात, आपके लिए एक और तोहफा मिला है। चले भाई, ये तो मदीने का हरमैन का तोहफा हो गया, ये आपके लिए कराची की सौगात, कुछ मिठाइयाँ हैं आपके और आपके घर वालों के लिए।
जजाक अल्लाह, क्या आप आ गए मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपके आल औलाद पर भी रहमत की नजर।
आपकी दुआएं, आपकी दुआएं लेने में आया था, आप बस दुआ कीजिएगा।
आफियत का सा